इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ये स्वाध्याय विशेष रूप से आप सबके सुनने और गुणने लायक
सुनने लायक
है।
इसलिए है कि हम सभी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है, पैडी सील सहाओ जीवन गाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलमवा ताणक थित्तम संयम सिद्धम। अर्थात जीव और कर्मों का संबंध अनादिकाल से जो चल रहा है, ये उसकी प्रकृति है, शील है, स्वभाव है। और किस प्रकार से पैड़ी सील सहाओ जीवन गाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलमवा, कणको पल अर्थात जैसे स्वर्ण पाषाण जो खान से निकलता है उसमें स्वाभाविक रूप से मलमवा, उसके ऊपर स्वर्ण पाषाण पर मल मलिनता स्वाभाविक रूप से रहती है, और जब उसे अग्नि में तपाया जाता है, पुरुषार्थ पूर्वक उस मैल को हटाया जाता है, तब सोना वह कनकोपल अर्थात स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण के रूप में सामने आता है, और उसके बाद उसके तरह तरह के गहने ज्वेलरी बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से स्वर्ण पाषाण के समान यह आत्मा निगोद की खान से निकला है, और इसमें जीव और पुद्गल का, जीव और कर्म का अनादिकाल से इसका संबंध चला आ रहा है। पुरुषार्थ पूर्वक जैसे स्वर्ण पाषाण के मैल को दूर किया जाता है, उसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक कर्म मैल को दूर करके और आत्मा स्वर्ण के समान चमकदार निखर सकता है, अर्थात भगवान आत्मा बन सकता है। तब इन चीजों को हमें बताया इस ग्रंथ के माध्यम से, छोटी सी पुस्तक के माध्यम से षटखंडागम का सार समझ लें हम, गोमट सार जीव कांड कर्म कांड का सार समझ लें हम, कि कैसे कैसे अशुद्ध जीव को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया तक लाया जाता है, और कौन सा जीव किस प्रकार से कौन सी गति से किस गति में जा सकता है। चार गतियों में सर्वप्रथम नरक गति का वर्णन किया है। नरक गति में जाने के दो द्वार हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, यानी मनुष्य या तो नरक में जा सकते हैं या तिर्यंच नरक में जा सकते हैं। किस किस प्रकार के पापों को करके कौन से नरक तक जा सकता है, ये आपने जाना। पुनः कौन से नरक से ये जीव निकल करके कौन सी गति में जाता है, तो ये से हो गया नरक गति से आने के द्वार। तो नरक गति से आए, तो नरक गति से आ करके जीव या तो मनुष्य गति में जन्म लेता है या तिर्यंच गति में। तो आपने जाना कि सातवें नरक से कोई जीव निकलेगा तो वह क्रूर पशु तिर्यंच ही होगा, और वह मनुष्य नहीं हो सकता। और छठे नरक से निकलेगा तो मनुष्य भी हो सकता है और तिर्यंच भी हो सकता है, दोनों गतियों में जा सकता है, लेकिन वहां पर ज्यादा पाप मंद नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत पुण्य कर्म नहीं कर सकता, अर्थात अणुव्रत महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता जीव। उसके बाद पांचवें नरक से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य हुआ है तो महाव्रत ग्रहण करने की और मुनि बनने की कल्पना भी की जा सकती है, यानी संभावना उसकी रहती है कि यदि शुद्धता आ जाए भाव में, कोई निमित्त अच्छे मिल जाए तो महाव्रत तक को धारण कर सकता है, और यदि तिर्यंच बना है तो देश व्रत को अणुव्रतों को कर सकता है। और चौथे नरक से निकले हुए जीव में से यदि कोई मनुष्य हुआ है तो वह कदाचित मुनि पद ग्रहण करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और यदि तिर्यंच हुआ है तो देशवती तक हो सकता है। यहाँ तक आपने पढ़ा और जाना। अब और नीचे और ऊपर, नीचे से नरक है, सातवां नरक सबसे नीचे, उसके बाद छठा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद चौथा, अब थोड़ा ऊपर आए तीसरे नरक। तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। जैसे चौथे नरक से कहा कि वहां कोई मुनि व्रत धारण के करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकते, सामान्य केवली हो सकते हैं और मोक्ष जा सकते हैं। और तीसरे नरक से निकल करके जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। अर्थात यदि किसी जीव ने तीर्थंकर होगा तो कैसे, आप सुनिएगा इसको, यदि किसी जीव ने यहाँ पर पहले नरक आयु का बंध कर लिया, अनंतर उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पुनः केवली भगवान के या शुद्ध केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति बंद करा, तो वह जीव मरने के कुछ क्षण ही पूर्व सम्यक्त से च्युत होकर तीसरे नरक में चला जाता है। अब आपको जानना यह है, देखो एक होती है गति और एक होती है आयु। नरक गति में नरक आयु ही रहती है, नरक गतियों में चारों आयु मुक्त हैं, तो अगर गति का बंद हुआ है तो छूट सकता है, लेकिन आयु बंद हो गया तो नियम से उस गति में जाना ही पड़ेगा। आयु बंद जो है वो छूटता नहीं, टूटता नहीं, इसलिए आपको जानना है ये। अगर यहाँ पर पहले नरक आयु का बंद कर लिया, कोई पाप करने से नरक आयु का बंद कर लिया, उसके बाद उसको उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त हुआ, अभी इच्छा समय दर्शन की बात नहीं है, उपशम या क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ और उसने केवली या शुद्ध केवली की पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि नरक आयु का भी बंध कर लिया, लेकिन उसे पुण्य के साधन बहुत अच्छे मिल गए और उपशम क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया, पुनः केवली शुद्ध केवली का पाद मूल भी अगर उसको मिल गया तो वहां पर उसने तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लिया, तब वो जीव मरने से कुछ क्षण पहले सम्यक्त से च्युत होकर यानी उपशम या सम्यक जाता है, कि जो फिर कभी छूटता ही नहीं होने के बाद। तो यहाँ नरक आयु के बंद की बात पता खबर किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन मरते समय उसका सम्यक दर्शन छूट गया, तो छूटने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का के बंध की महिमा जाने कि वह तीसरे नरक तक जा सकता है, और वहां जाते ही नरक में अंतर मुहूर्त के अंदर उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, और जैसे ही पर्याप्ति है पुनः वह प्राप्त कर लेता है, और वह सम्यक दर्शन उसके पूरी आयु तक, वहां नरक में भी पूरी आयु भोगने तक सम्यक दर्शन रहता है। उस सम्यक दर्शन का उसका फल ये रहता है, सार्थकता ये रहती है कि वहां गया हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन गया है, तो अपने कर्म के फल का चिंतन वहां पर कष्ट को भोगता है, लेकिन कष्ट होते हुए भी उसको अब आगे के लिए परस्पर बैर संधान नहीं रहती है, क्योंकि आगे तो तीर्थंकर बनना है। तो हाँ ये नहीं है कि इसने मुझे भाला मौका है तो मैं इससे बदला लूंगा, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि नहीं होती। इसलिए ये समझो अगर तीसरे नरक में चला गया तो वहां भी वहां से आ करके फिर तीर्थंकर बनेगा, कहा कि आयु पर्यंत वहां पर पूरा सम्यक दृष्टि रहता है, और उसके वहां से निकलने पहले ही देवगण वहां पर जाकर उस नार की जीव यानी जो भावी तीर्थंकर का जीव है, कर्म के उदय से नरक में पड़ा हुआ है, उसे देवगण सुरक्षा एक बाड़ बना देते हैं। अब उस बाड़ के अंदर कोई नार की अब उसे कष्ट देने नहीं जा सकता है, केवल 6 महीने का काल ऐसा रहता है, उसके चारों ओर परकोटा सुरक्षित कर देते हैं, तथा वे देवगण यहाँ मध्यलोक में जन्म नगरी में अतिशय शोभा करके माता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं, यानी नारकी को भी पता तो चल जाता है क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो वहां उनका जो भाव प्रत्यय अवधिक ज्ञान है वह सम्यक्त के कारण उस अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं, लेकिन अब वो तो कर्मजन्य व्यवस्था है। और इधर 6 महीने के बाद नरक से निकल करके माता के गर्भ में आते हैं तीर्थंकर के रूप में, और यहाँ पर श्री आदि देवियां इंद्र महाराज की आज्ञा से आकर माता की सेवा करती हैं, गर्भ शोधन आदि क्रियाएं करती हैं। तो ये इस चीज को आपको ये विशेष बात जान लेनी है कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, मरते समय छूटेगा, लेकिन नरक में क्योंकि उसे जाना ही पड़ेगा, पहले नरक आयु का बंध कर लिया है तो तीसरे नरक में जाएगा और वहां जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। पुनः आकर के जिन माता के घर में आने के तीर्थंकर बन करके और माता को 16 स्वप्न आदि दिखाएगा। तो अनंतर तीर्थंकर होने वाला वह जीव नरक से निकलकर माता के घर में प्रवेश करता है, तब इंद्र शची इंद्राणी सहित असंख्य देव परिवारों के साथ आकर तीर्थंकर की माता पिता की पूजा करके महान उत्सव के साथ गर्भ कल्याणक मनाते हैं। तात्पर्य ये रहा कि तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। ये विशेष बात इसलिए बताई कि अब नरक गति से निकलकर कहाँ कहाँ ये जीव जा सकता है उसको विशेष रूप से जाना। नरक और तिर्यंच और मनुष्य गति में जाएगा, और मनुष्य गति में तीसरे नरक से निकला हुआ जीव आकर तीर्थंकर के रूप में जन्म ले सकता है। अब आगे सुनिएगा, इस कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे और पहले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। जब तीसरे नरक से आकर के तीर्थंकर हो सकते हैं तो पहले और दूसरे नरक के जीव भी तीर्थंकर हो सकते हैं, केवली भी हो सकते हैं और मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु देखो, एक बात है जो आपको आगे अपने परीक्षा में ध्यान देना रहेगा कि कौन से नरक से आकर जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। तो तीसरे नरक तक के, पहले दूसरे तीसरे नरक तक के जीव आके तीर्थंकर हो सकते हैं, किंतु नरकों से निकले हुए जीव चक्रवर्ती बलभद्र नारायण या प्रति नारायण नहीं हो सकते, ये बात विशेष है। अब आप कहें क्यों नहीं हो सकते, तो क्यों का कोई उत्तर नहीं होता। स्वभावो तर्क गोचरः, स्वभाव जो है तर्क गोचर नहीं है, ये नियति है, ये सिद्धांत है, ये हीरे का कांटा है। और इस सिद्धांत को यहाँ पर पूज्यगणनीय ज्ञानमती माता ने बता दिया, तीर्थंकर जैसा महत्वपूर्ण पद तो ले सकते हैं लेकिन वैभवशाली चक्रवर्ती नारायण बलभद्र या प्रति नारायण नहीं हो सकते, ये विशेष बात आपको जानना है। यानी जो वर्तमान युग में जो चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण बलभद्र हुए हैं ये सब स्वर्गों से आए हैं, ये आपको विशेष जानना है। ये कोई भी नरक से नहीं आए हैं, क्योंकि नरक से आए हुए जीव ये पद नहीं पा सकते। तो आपको भी जानना है कि ये पद किसी को भी प्राप्त होंगे, यानी भरत चक्रवर्ती जो अयोध्या के अंदर जन्मे, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे, स्वर्ग से आए थे, और सभी चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रति नारायण स्वर्ग से आए थे, और यहाँ पर फिर अपने अपने अनुसार नरक गति में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, मोक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन जो बात विशेष है एक लाइन की, इसको विशेष नोट करके रखना। इस तरह नरक गति से आने के द्वार अर्थात गतियां बताई गई हैं। इसमें ये बात खास तौर से समझने की है कि जो जो नरक से निकलकर तीर्थंकर या केवली आदि होते हैं वह सब सम्यक्त का ही महात्म्य है। इन्हें सम्यक दर्शन में इतनी शक्ति इतनी महिमा होती है। सातवें नरक से जीव निकलकर सम्यक्त, सातवें नरक से जीव सम्यक्त लेकर नहीं निकल सकते किंतु अन्य नरकों से सम्यक्त लेकर भी निकल सकते हैं, और सातों ही नरकों में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आपने अच्छी तरह से प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर पढ़ा है कि चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन के अलग अलग कारण बताए गए हैं। अब प्रश्न आया कि क्या मनुष्य गति में भी असैनी जीव होते हैं या सिर्फ तिर्यंच में असैनी होते हैं? तो ये जानना, मनुष्य असैनी नहीं होते हैं, तिर्यंच ही असैनी होते हैं। और तिर्यंचों में भी कोई कोई तोता या सरीसृप माने पानी में रहने वाले सांप। आपने पहले अभी पढ़ा था कि सरीसृप जो है पानी में रहने वाले सांप जो है दूसरे नरक तक जा सकते हैं। और आगे कहा था सर्प जो साधारण सर्प हैं उनके अंदर अजगर हैं या फणधारी हैं, नाग नागिन हैं, ये चौथे नरक तक भी जा सकते हैं। इनकी अलग अलग क्वालिटी है। तो आप समझ लेना, मनुष्य कोई असैनी नहीं होते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं और सैनी होते हैं। तिर्यंचों में ही पंचेंद्रीय तिर्यंच कोई कोई असैनी होते हैं, उनमें से तोता और सरीसृप का ही वर्णन आता है। नरकों में सम्यक्त के लिए बहिरंग कारणों में वेदना अनुभव, जाति स्मरण और देवों द्वारा संबोधन, ये तीन कारण माने गए जो आप पहले पढ़ चुके हैं और परीक्षा में इसे लेकर उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। देवों द्वारा संबोधन तृतीय नरक तक ही है, इससे नीचे कोई भी देव नहीं जा सकते। उसमें आप पढ़ते हैं तत्वार सूत्र में, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्ट परिणामों से सहित असुर कुमार देव चौथे नरक से पहले पहले तक यानी तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को दुख उत्पन्न करा सकते हैं। तो जैसे वो दुख उत्पन्न करा सकते हैं, ऐसे कोई मित्र देव जाकर के संबोधन भी दे देते हैं। तो तीसरे नरक तक ही जाकर उन्हें संबोधन देकर सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकते हैं। देवों द्वारा संबोधन तृतीय नरक तक ही है, इससे नीचे कोई भी देव नहीं जाते। अतः चतुर्थादि नरकों में दो ही कारण हैं। यदि किसी मनुष्य ने पहले नरक आयु बांध ली और बाद में क्षायिक सम्यक प्राप्त किया है तो वह पहले नरक में ही जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। नरक गति में नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष एवं उत्कृष्ट आयु में 33 सागर प्रमाण है। इनकी आयु का विस्तृत वर्णन तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। आज हम इस नरक गति के विषय को परिपूर्ण करेंगे। तो आपको जानना है कि क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में अगर पहले सम्यक दर्शन होने से पहले किसी ने नरक आयु बांधी, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो मर करके पहले नरक में चले जाएंगे जैसे राजा शेरनी। तात्पर्य यही समझना चाहिए कि बिना सम्यक्त के बिना ये जीव अनंतों बार नरक गति में जा चुका और वहां से आकर मनुष्य भोग को भी प्राप्त कर संसार में ही घूमता रहता है। और यदि संसार भ्रमण को समाप्त करना है तो सम्यक्त को ग्रहण करना चाहिए। ये हुआ स्वाध्याय का सार, नरक गति में कैसे जाते हैं और नरक गति से निकलकर कहाँ कहाँ जाते हैं। और अपने सम्यक दर्शन को यदि दृढ़ रखेंगे तो नरक आयु का भी बंधना इतना भी संक्लेश ना करें कि पता नहीं कब आयु बन जाए, नरक आयु तिर्यंच आयु कब बंध जाए। और एक बार आयु बंध गई तो फिर वो छूटेगी नहीं। इसलिए सबसे महिमापूर्ण बात यह है कि अपनी कषायों को कम रखें, सम्यक दर्शन को मलिन ना होने दें और पुण्य का बंध सदैव करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब आयु का बंध हो जाए। आज के स्वाध्याय का सार समझकर अब हम गुरु पूजा की ओर गुरु